एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और काफी अहम किताब में।
हाँ, जॉन एडवर्ड्स की सोशियो लिंग्विस्टिक्स।
बिल्कुल, ये किताब मतलब हमारी रोजमर्रा की जो बातचीत है ना,
हाँ जी,
उसके पीछे जो छुपा हुआ सामाजिक ताना-बाना है,
हाँ,
उसे समझने में मदद करती है।
सही कहा। और ये आज के दौर में समझना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए जरा, हम सब दिन भर बोलते हैं, लिखते हैं,
जी
संवाद करते हैं,
बिल्कुल,
पर क्या हमने कभी गौर किया है कि हम कैसे बोलते हैं और क्यों अलग अलग लोगों से अलग अलग हालात में हमारी भाषा बदल सी जाती है?
हाँ, ये एडवर्ड्स की किताब यही दिखाती है
हाँ,
कि भाषा सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है,
नहीं है,
बल्कि ये हमारी पहचान,
हाँ,
हमारे रिश्ते और समाज में आप कह सकते हैं हमारी हैसियत से गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ, और ये समझ आज की इस मिलीजुली मतलब कनेक्टेड दुनिया में बहुत मायने रखती है।
हाँ, अपनी और दूसरों की भाषा को बेहतर समझकर हम शायद बेकार के जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, उनसे बच सकते हैं।
और एक दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए पहले लेखक जॉन एडवर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है ये?
जॉन एडवर्ड्स, ये कनाडा की सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
अच्छा,
और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ भाषाविद नहीं है, मतलब लिंग्विस्ट ही नहीं है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई भी की है।
एग्जैक्टली। तो जब वो भाषा को देखते हैं तो वो सिर्फ शब्दों और नियमों को नहीं देखते।
नहीं, बल्कि उसके पीछे के इंसान, समाज और शायद दिमाग को भी देखते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच है उनका।
ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो भाषा के व्याकरण के साथ साथ उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी जोड़ते हैं।
हाँ, और दशकों से उन्होंने भाषा और पहचान, फिर ये अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति और दुनिया में बहुभाषावाद मतलब कैसे कई भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं, इन सब पर काफी काम किया है।
और शायद उनकी मनोविज्ञान की समझ उन्हें ये जानने में मदद करती है कि लोग अपनी भाषा से इतना क्यों जुड़ते हैं या क्यों किसी खास बोली या लहजे को लेकर हमारे मन में अच्छे या बुरे ख्याल आते हैं।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो इतने मुश्किल और कभी कभी संवेदनशील लगने वाले विषय को भी बड़ी आसानी से समझा पाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से।
हाँ, जैसे वो उन भाषाओं की बात करते हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं, तो उनका नजरिया बहुत बैलेंस्ड, बहुत व्यवहारिक लगता है।
सही, वो सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समुदाय की भूमिका पर भी जोर देते हैं कि भाई बचाना है तो समुदाय को ही आगे आना होगा।
तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है अगर हमें एक लाइन में समझना हो?
शायद ये कि भाषा कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है,
हाँ,
बल्कि हमारी जिंदगी का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। एडवर्ड्स इस विचार को तोड़ते हैं कि भाषा बस सही गलत व्याकरण के नियमों का खेल है।
बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि ये एक सामाजिक गतिविधि है, जैसे हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, भाषा भी वैसी ही है।
सही कहा। किताब का एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारी भाषा हमारे समाज, हमारी पहचान और हमारे बीच के शक्ति संबंधों के बारे में क्या बताती है?
मतलब हम सब एक ही भाषा, मान लीजिए हिंदी या अंग्रेजी, बोलते हुए भी इतने अलग तरीकों से क्यों बोलते हैं? क्या वजह है इसकी?
एडवर्ड्स इसी भाषाई विविधता को समझने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि जिसे हम सही या शुद्ध भाषा मानते हैं ना,
हाँ,
वो अक्सर सिर्फ किसी एक ताकतवर समूह की भाषा होती है। भाषाई तौर पर वो दूसरों से बेहतर नहीं होती।
ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब बेहतर नहीं, बस ज्यादा पावरफुल।
बिल्कुल, तो किताब हमें कहाँ ले जाती है? ये हमारी अपनी बोली के छोटे छोटे फर्क से शुरू होती है।
अच्छा।
और फिर पूरे देश की भाषा नीतियों तक का सफर कराती है, वृहद स्तर तक।
इसमें ये देखा गया है कि कैसे हमारी सामाजिक क्लास, हमारा लिंग, हमारी जाति या क्षेत्र, हमारी उम्र, ये सब हमारी भाषा पर असर डालते हैं।
हाँ, और किताब सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, यह हमें दुनिया को सुनने का एक नया नजरिया देती है।
सुनने का कैसे?
मतलब ये हमें वो समझ देती है जिससे हम रोजमर्रा की बातचीत में छिपे सामाजिक संदेशों को पढ़ सकें कि कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, किस अंदाज में कह रहा है।
अच्छा, एडवर्ड्स का मकसद साफ है, भाषा सिर्फ विचार बताने का औजार नहीं है।
नहीं, ये सामाजिक हैसियत दिखाने, अपनी पहचान बनाने और यहाँ तक कि ताकत जताने का एक मैदान भी है।
मैदान। ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, तो चलिए अब कुछ खास बातों पर गौर करते हैं जो एडवर्ड्स उठाते हैं। शुरुआत होती है इस बुनियादी विचार से कि भाषा असल में है ही सामाजिक,
नेचुरली सोशल।
बिल्कुल, सोशल लिंग्विस्टिक्स इसी बात पर ध्यान देती है कि लोग असल जिंदगी में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ना कि सिर्फ किताबी नियमों पर।
और ये जो फर्क हम देखते हैं बोलने में, वो बेमतलब नहीं होता है ना, उसका कोई ना कोई सामाजिक मतलब जरूर होता है।
सही, यहीं पर विलियम लिवोव जैसे भाषा वैज्ञानिकों का काम आता है, जिन्होंने दिखाया कि ये फर्क कैसे समाज से जुड़े हैं, स्पीच कम्युनिटीज, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, ये सब।
और यहीं से जुड़ा है भाषा बनाम बोली का मुद्दा। हम अक्सर बोली शब्द को थोड़ा कमतर आंकते हैं ना?
हाँ, जैसे वो असली भाषा ना हो, कोई कमी हो उसमें।
एडवर्ड्स इस धारणा को चुनौती देते हैं। भाषा विज्ञान की नजर से हम सब कोई ना कोई बोली ही बोलते हैं।
बिल्कुल, जिसे हम मानक स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं, वो असल में सिर्फ उस समूह की बोली होती है जिसके पास समाज में ज्यादा रुतबा या ताकत होती है।
वो मशहूर कहावत याद आती है, भाषा वो बोली है जिसके पास अपनी फौज और नौसेना होती है।
हाँ, ये मजेदार है पर गहरा मतलब है इसमें। ये बताता है कि अक्सर किसी बोली को भाषा का दर्जा मिलना राजनीतिक और सामाजिक ताकत का खेल होता है,
भाषाई बनावट का नहीं।
नहीं, सभी बोलियां अपने आप में पूरी तरह विकसित और नियमबद्ध होती हैं, कोई किसी से बेहतर या कमतर नहीं होती।
बिल्कुल, अब सोचिए क्या हमारी सामाजिक या आर्थिक हैसियत का हमारी भाषा से कोई लेना देना है?
एडवर्ड्स कहते हैं हाँ बिल्कुल है। विलियम लबोव का न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट स्टोर्स वाला अध्ययन बहुत मशहूर है।
हाँ, वो आर उच्चारण वाला।
हाँ, उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग आर का उच्चारण, जैसे कार में चौथा अक्षर, स्टोर की हैसियत और माहौल के हिसाब से बदल रहे थे। ऊंचे स्टोर में लोग ज्यादा साफ बोलने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा कॉन्शियस थे।
हाँ, और इसी तरह इंग्लैंड में पीटर ट्रजल ने देखा कि लोग आइंग का उच्चारण, जैसे गोइंग को गोइन बोलना, कब और क्यों बदलते हैं, अपनी सोशल क्लास के हिसाब से।
यहाँ दो दिलचस्प बातें सामने आती हैं, ओवर्ट प्रेस्टीज यानी मानक भाषा बोलने की चाहत जिसे सब अच्छा मानते हैं,
और दूसरी कोवर्ट प्रेस्टीज।
हाँ, मतलब अपने समूह की खास बोली से जुड़ाव महसूस करना, भले ही बाहर वाले उसे गलत समझें।
कभी हम सही दिखना चाहते, कभी अपने जैसा, ये द्वंद चलता रहता है।
बिल्कुल, और लिंग का भाषा पर असर, ये भी एक पेचीदा मामला है।
हाँ, पहले माना जाता था कि औरतें ज्यादा हिचकिचाकर या सवाल पूछकर बोलती हैं, लैक ऑफ का मॉडल था शायद।
हाँ, वो शुरुआती मॉडल थे, लेकिन अब समझ बदली है। एडवर्ड्स बताते हैं कि हम भाषा के जरिए अपने लिंग की पहचान को निभाते हैं या परफॉर्म करते हैं।
परफॉर्म करते हैं
मतलब
ये कि समाज ने जो तय कर रखा है कि मर्द कैसे बोलेंगे, औरतें कैसे बोलेंगी, हम कहीं ना कहीं उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं या तोड़ते हैं, और समाज अक्सर एक ही बात के लिए मर्दों और औरतों को अलग अलग तरह से आंकता है। और जातीयता, एथनिसिटी, उसका भाषा से रिश्ता,
वो भी बहुत गहरा है। हमारी भाषा अक्सर हमारी जड़ों, हमारी कम्युनिटी की पहचान होती है। एडवर्ड्स अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्युलर इंग्लिश AV का उदाहरण देते हैं।
हाँ, जिसे कई बार लोग स्लैंग या गलत अंग्रेजी समझ लेते हैं।
बिल्कुल, जबकि वो कोई बिगड़ी हुई अंग्रेजी नहीं, बल्कि अपने नियमों वाली एक पूरी व्यवस्था है, पूरी तरह लॉजिकल और सिस्टमैटिक।
लेकिन अक्सर इससे लेकर विवाद होते हैं।
हाँ, जो दिखाते हैं कि कैसे भाषा को लेकर पूर्वाग्रह असल में नस्लीय पूर्वाग्रह का ही एक रूप हो सकते हैं, मुखौटा होते हैं।
और इसी से जुड़ा है कोड स्विचिंग का विचार, ये तो हम रोज करते हैं।
हाँ, मतलब बातचीत में दो या ज्यादा भाषाओं या बोलियों के बीच आना जाना, जैसे हम अक्सर हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं,
या घर की बोली से दफ्तर की भाषा में स्विच करते हैं।
एडवर्ड्स कहते हैं कि ये कोई भाषाई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल सामाजिक रणनीति है। इससे हम अलग अलग पहचानों और स्थितियों को संभालते हैं, नेविगेट करते हैं।
भारत में तो ये रोज ही दिखता है, इंग्लिश तो आम बात है।
बिल्कुल, और दुनिया में ज्यादातर लोग एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, ये भी किताब बताती है। बहुभाषावाद नॉर्म है, मोनोलिंग्वलिज्म नहीं।
हाँ, और जब भाषाएं आपस में मिलती हैं तो उधार के शब्द लिए जाते हैं।
कभी कभी काम चलाओ मिक्स भाषाएं बनती हैं, जिन्हें पिडजिन कहते हैं।
और अगर वो किसी पीढ़ी की मातृभाषा बन जाए
तो वो पूरी नई भाषा बन सकती है, जिसे क्रियोल कहते हैं। भाषाएं स्थिर नहीं रहती, मिलती जुलती बदलती रहती हैं।
अच्छा, अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पर आते हैं। भाषा के प्रति हमारा नजरिया, वो मैच्ड गाइज तकनीक क्या है?
हाँ, ये कमाल की तकनीक है। सोचिए आपको एक ही इंसान की आवाज दो अलग अलग लहजों में सुनाई जाए, मान लीजिए एक स्टैंडर्ड लहजे में, एक किसी क्षेत्रीय लहजे में।
ठीक है।
और फिर पूछा जाए कि ये इंसान कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा, कितना भरोसेमंद, कितना मिलनसार।
तो क्या होता है?
अध्ययन बता दें कि लोग सिर्फ लहजा सुनकर ही उस इंसान के बारे में पक्की राय बना लेते हैं।
अक्सर मानक लहजे वाले को ज्यादा काबिल और भरोसेमंद मान लिया जाता है।
अरे ये तो डरावना है। मतलब हम अनजाने में ही सिर्फ किसी के बोलने के तरीके से उसके बारे में कितने गहरे फैसले कर लेते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि भाषा को लेकर हमारी पसंद नापसंद असल में समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों से कितनी जुड़ी हुई है। जिसे हम अच्छा लहजा कहते हैं वो शायद सिर्फ ताकतवर या ऊंची हैसियत वाले लोगों का लहजा होता है।
सरकारें भी भाषा पर असर डालती हैं। ये भाषा नियोजन या लैंग्वेज प्लानिंग कहलाता है ना?
हाँ, जैसे किसी भाषा को राष्ट्रभाषा या ऑफिशियल भाषा बनाना, ये स्टेटस प्लानिंग है।
या भाषा को मानकीकृत करना, उसके शब्द बनाना, ये कॉर्पस प्लानिंग हुई।
बिल्कुल, जैसे हिब्रू को दोबारा जीवित किया गया, या फिर स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए ये तय करना, ये एक्विजिशन प्लानिंग है। भारत में त्रिभाषा सूत्र जैसे फैसले इसी का उदाहरण है। इनके अपने फायदे और चुनौतियां होती हैं, खासकर छोटी या अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए।
सही कहा, शिक्षा में भाषा का सवाल बहुत अहम है। अगर बच्चे घर पर मानक भाषा से अलग बोली बोलते हैं तो स्कूल में उन्हें कैसी मुश्किलें आती हैं?
क्या शिक्षकों के मन में भाषाई पूर्वग्रह होते हैं अनजाने में ही? सही,
बिल्कुल हो सकते हैं। द्विभाषी शिक्षा कितनी कारगर है, एडवर्ड्स इन सवालों पर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को इन नजरियों से देखना चाहिए।
आखिर में किताब भाषा में बदलाव और कुछ भाषाओं के खत्म होने के खतरे पर भी बात करती है।
हाँ, एडवर्ड जोर देते हैं कि भाषा का बदलना स्वाभाविक है, ये कोई बिगड़ना या क्षय नहीं है। भाषा हमेशा बदलती है,
लेकिन हाँ, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कारणों से कई बार पूरा समुदाय अपनी भाषा छोड़कर कोई दूसरी ताकतवर भाषा अपना लेता है। इसे भाषा विस्थापन या लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं।
की बात है कि आज दुनिया भर में हजारों भाषाएं लुप्त होने के खतरे में हैं। एक बड़ा संकट है ये।
इन्हें बचाने की कोशिशें हो रही हैं, पर एडवर्ड्स का नजरिया यहाँ भी व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब उस भाषा को बोलने वाला समुदाय खुद इसके लिए प्रेरित हो। बाहर से थोपा नहीं जा सकता।
सही, और आज के डिजिटल युग में टेक्स्टिंग, सोशल मीडिया, इन सबका हमारी भाषा पर क्या असर पड़ रहा है?
नए तरह के शब्द बन रहे हैं, लिखने के नए तरीके आ रहे हैं, इमोजीज हैं,
ऑनलाइन नई भाषा वाली कम्युनिटीज बन रही हैं। ये भी सोशल लिंग्विस्टिक्स के लिए एक नया और दिलचस्प मैदान है।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारा सामाजिक बर्ताव है,
सोशल बिहेवियर।
हाँ,
हम किसके साथ कहाँ क्या बात कर रहे हैं ये सोचकर हम अपनी भाषा चुनते हैं, और ये चुनाव हमारी पहचान और हमारे इरादे जाहिर करते हैं। जरा भारत में सोचिए, कैसे हम अपने दोस्तों से अलग तरह से बात करते हैं, घर पर अलग,
और शायद किसी बड़े अफसर से मिलते वक्त हमारी भाषा बिल्कुल बदल जाती है,
फॉर्मेलिटी आ जाती है।
ये सिर्फ अदब नहीं, ये सामाजिक समझ है।
दूसरी अहम बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है मानक या शुद्ध भाषा का मिथक।
हाँ, ये मिथक तोड़ना जरूरी है।
एडवर्ड्स बार बार कहते हैं कि कोई भी बोली भाषाई तौर पर दूसरी से बेहतर नहीं होती। जिसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर होती है।
और इस स्टैंडर्ड को सही और बाकी सबको गलत या गवार समझना सिर्फ एक सामाजिक पूर्वाग्रह है।
भारत में ये कितना आम है, किसी की अंग्रेजी या हिंदी के लहजे या शब्दों के आधार पर हम फौरन उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी काबिलियत या पृष्ठभूमि के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं,
जज कर लेते हैं।
तीसरा, हमारी पहचान और हमारी भाषा का गहरा रिश्ता। हम कौन हैं, किस इलाके से हैं, किस समुदाय से हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारा लिंग क्या है, ये सब हमारी भाषा में झलकता है। और कोड स्विचिंग यानी भाषाओं को मिला जुला कर बोलना।
हाँ, ये दिखाता है कि हमारी पहचान भी कितनी बहुस्तरीय है,
मल्टीलेयर्ड।
भारत में हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण या अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा का इस्तेमाल, ये आज की सच्चाई है और हमारी मिलीजुली पहचान का हिस्सा है।
ये कोई कमी नहीं बल्कि एक खूबी है, एक स्किल है।
बिल्कुल।
चौथी बात, भाषा और शक्ति का खेल। कौन सी भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, कौन सी भाषा नौकरियों में चलेगी, मीडिया में किसे ज्यादा जगह मिलेगी,
ये सब फैसले भाषा में मौजूद शक्ति समीकरणों को दिखाते हैं और उन्हें मजबूत भी करते हैं।
भाषा के प्रति हमारा नजरिया अक्सर ये दिखाता है कि हम समाज में किसे ज्यादा महत्व देते हैं।
भारत में सोचिए, कुछ भाषाओं या लहजों को क्यों ज्यादा प्रेस्टीजियस माना जाता है, क्यों अंग्रेजी का इतना बोलबाला है?
सोचने वाली बात है। और आखिरी बात, जो एक तरह से सबका निचोड़ है, भाषाई विविधता एक समस्या नहीं बल्कि खजाना है, एक रिसोर्स है।
हाँ, दुनिया भर में इतनी भाषाएं और बोलियां हैं, ये इंसान की रचनात्मकता का सबूत है।
इन्हें खतरे या कमी की तरह देखने के बजाय हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है, ये हमारी ताकत है, इसे बोझ नहीं समझना चाहिए।
एडवर्ड्स के किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। जैसे वो कहते हैं, भाषा शायद व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते का सबसे संवेदनशील सूचक है।
कितनी गहरी बात है, हमारी जुबान हमारे अंदर के और बाहर के समाज से हमारे जुड़ाव का आईना है, एक इंडिकेटर है।
हाँ, और ये वाली बात भी कि मानक भाषाएं भाषाई रूप से गैर मानक किस्मों से बेहतर नहीं होती, वे केवल वो किस्में हैं जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व हासिल कर लिया है।
ये सीधे सीधे हमें भाषा की शुद्धता के दंभ पर सवाल उठाने को कहती है। ये बताती है कि मामला भाषा का कम, ताकत का ज्यादा है।
वो कहावत फिर याद आती है, एक भाषा सेना और नौसेना वाली एक बोली होती है।
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाषा और बोली का फर्क हम कैसे तय करते हैं। अक्सर ये राजनीतिक होता है, भाषा ही नहीं।
और ये भी कि किसी लहजे की शुद्धता या सुंदरता के बारे में हमारे निर्णय वास्तव में उसका उपयोग करने वाले लोगों की कथित स्थिति और मूल्य के बारे में सामाजिक निर्णय होते हैं।
ये सुनकर तो अपने अंदर झांकने का मन करता है। हम जिसे प्यारा या खराब लहजा कहते हैं, कहीं वो बोलने वाले के प्रति हमारा पूर्वाग्रह तो नहीं, हमारा बायस?
बहुत संभव है। और अंत में एक उम्मीद जगाने वाली बात, समाज में भाषा का अध्ययन बताता है कि भाषाई विविधता हल की जाने वाली समस्या नहीं है बल्कि समझने और महत्व देने वाला संसाधन है।
ये हमें अपनी और दूसरों की भाषाओं की इज्जत करने और उनकी विविधता को सराहने के लिए प्रेरित करता है।
अप्रिसिएशन।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है,
हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शिक्षा में सोचें तो शिक्षकों के लिए समझना कितना जरूरी है कि क्लास में अलग अलग भाषा या बोली बोलने वाले बच्चे आते हैं।
हाँ, उनकी भाषा का सम्मान करना, उन्हें हीन महसूस ना कराना।
ये समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की पहली सीढ़ी है। भारत में जहाँ इतनी बोलियां हैं, ये बात और भी अहम हो जाती है।
बिल्कुल। और दफ्तरों में,
वर्क प्लेस पर,
भर्ती करते वक्त या टीम में काम करते वक्त सिर्फ किसी के बोलने के अंदाज या लहजे के आधार पर उसकी काबिलियत को कम आंकना गलत है।
हाँ, ये लिंग्विस्टिक बायस कहलाता है। एक विविध कार्यस्थल में जहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, ये समझ बेहतर कम्युनिकेशन और आपसी सम्मान बनाने में मदद कर सकती है।
निजी रिश्तों में भी
हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारे मन में भी भाषा को लेकर कोई पूर्वाग्रह है? क्या हम दोस्तों या रिश्तेदारों की बोली का मजाक उड़ाते हैं
या हम उनकी विविधता की सराहना करते हैं? अपनी सोच पर ध्यान देना पहला कदम है, सेल्फ अवेयरनेस।
और बड़े स्तर पर देखें तो भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा से जुड़ी नीतियों जैसे त्रिभाषा सूत्र या अल्पसंख्यक भाषाओं के अधिकारों के पीछे के सामाजिक असर को समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं होते, इनका लोगों की जिंदगी और पहचान पर गहरा असर पड़ता है।
हाँ, और मीडिया पर भी नजर रखनी चाहिए। फिल्में, टीवी शो, विज्ञापन, इनमें अक्सर किसी खास बोली या लहजे को मजाकिया या नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है।
हाँ, स्टीरियोटाइप बना दिए जाते हैं। इन भाषाई स्टीरियोटाइप्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना भी जरूरी है ताकि ये पूर्वाग्रह और ना फैलें।
इस किताब से अगर मुझे एक चीज साथ ले जानी हो तो वो ये समझ है कि स्टैंडर्ड भाषा जैसी कोई चीज भाषाई नजरिए से नहीं होती।
हाँ, ये सिर्फ सामाजिक शक्ति का खेल है।
बिल्कुल।
हर कोई एक बोली बोलता है और हर बोली अपने आप में पूर्ण है। ये जानने के बाद भाषा को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला पहलू था वो मैच्ड का इस तकनीक के नतीजे।
हाँ, वो वाकई आंखें खोलने वाला था।
ये जानना कि सिर्फ आवाज का लहजा सुनकर हम किसी के बारे में इतने पक्के और अक्सर गलत अंदाजे लगा लेते हैं, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दिमाग में कितने गहरे पूर्वाग्रह बैठे हो सकते हैं,
कितने अनकॉन्शियस बायस हैं।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ हम टेक्स्ट और मैसेज से ज्यादा बात करते हैं और चेहरे के भाव या आवाज का लहजा गायब होता है,
हाँ, कॉन्टेक्स्ट कम होता है,
वहाँ सोशियो लिंग्विस्टिक्स की ये समझ हमारी ऑनलाइन बातचीत को कैसे बेहतर बना सकती है?
या ये सोचिए कि भारत में हिंग्लिश या दूसरी मिक्स भाषाओं का बढ़ता चलन हमारी आज की पहचान के बारे में क्या कहता है और उसे कैसे बना रहा है, ये सवाल सोचने लायक है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।